पिछले भाग में हमने डॉक्टर सन्यात सेन और किमिंग तोंग दल के संबंध के विषय में चर्चा करने की शुरुआत की। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 1920 में किमिंग तोंग दल ने अपनी सरकार को कैंटन में सुदृढ़ रूप से स्थापित कर लिया था। 1923 तक माइकल बोर्डिन के सहयोग से इस दल का संगठन भी बहुत दृढ़ हो गया था। रूस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों का सहयोग किमिंग दल को प्राप्त था, जिसके कारण इस दल के लोगों में दो प्रकार की प्रवृत्तियां विकसित हो गई थी। कुछ लोग किसानों और मजदूरों को संगठित करने के लिए प्रयत्नशील थे। डॉक्टर सन्यात सेन का समर्थन इन्हें प्राप्त था, पर कैंटन के धनिक व्यापारी किमिंग तोंग दल में सम्मिलित होते हुए भी किसानों और मजदूरों की शक्ति को चिंता की दृष्टि से देखते थे। परिणाम यह हुआ कि इन्होंने अपनी पृथक स्वयंसेवक सेना का संगठन किया और इस सेना को सुसज्जित करने के लिए विदेशी राज्यों से अस्त्र शस्त्र मंगाए गए। पर डॉक्टर सन्यात सेन का मुकाबला कर सकने में ये धनी व्यापारी सफल नहीं हो सके। इनके अस्त्र शस्त्रों को जब्त कर लिया गया और डॉक्टर सन्यात सेन कैंटन सरकार में अपने प्रभुत्व को कायम रखने में समर्थ हुए। अब डॉक्टर सन्यात सेन ने यह प्रयत्न किया कि पेकिंग सरकार से समझौता कर चीन में राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया जाए। उनका विचार था कि वू पेई फू के खिलाफ तुआन ची जुई, चांग तसोलिन और फेंग यू ही शांग के साथ समझौता कर एक ऐसी व्यवस्था पैदा की जा सकती है जिससे पेकिंग और कैंटन की सरकारें संयुक्त हो जाएं। इसी उद्देश्य से उन्होंने कैंटन से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। 1925 के शुरू में वह पेकिंग पहुंच गए, पर वहां जाकर उन्हें घोर निराशा का सामना करना पड़ा। उत्तरी चीन के महत्वाकांक्षी व प्रबल सिपा सलारों के साथ उनका समझौता नहीं हो सका। 12 मार्च 1925 को पेकिंग में ही उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद किमिंग तोंग दल की शक्ति घटी नहीं, अपितु उसमें और भी अधिक वृद्धि हुई। लोगों ने समझा कि डॉक्टर सन्यात सेन एक महापुरुष थे जिन्होंने अपना सारा जीवन देश की उन्नति में स्वाहा कर दिया था। देश का कल्याण इसी में है कि उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। उनके जीवन काल में अनेक व्यक्ति किमिंग तोंग दल में ऐसे भी थे जो उनके विरोधी थे, पर अब लोगों ने उनके सिद्धांतों को आदर्श के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार भारत में महात्मा गांधी को, रूस में लेनिन को अत्यधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, वैसे ही चीन की जनता ने डॉक्टर सन्यात सेन के प्रति सम्मान और श्रद्धा के भाव प्रदर्शित करने शुरू किए। शिक्षणालयों और सार्वजनिक स्थानों और सरकारी दफ्तरों में उनके चित्रों व प्रतिमाओं की स्थापना की गई और अनेक श्रद्धालु लोग पुष्पमाला आदि द्वारा इनकी पूजा करने में भी तत्पर हुए। डॉक्टर सन्यात सेन की पुस्तकों का लोग धर्म ग्रंथों के समान आदर करने लगे। उनके नाम व आदर्शों के कारण किमिंग तोंग दल में नई स्फूर्ति और नवजीवन का संचार हुआ। आइए अब हम राष्ट्रीय एकता की स्थापना पर बात करें। कैंटन में अपनी सरकार को सुव्यवस्थित रूप से स्थापित करने के बाद किमिंग तोंग दल के सम्मुख मुख्य कार्य यह था कि संपूर्ण चीन को एक शासन की अधीनता में लाने का प्रयत्न किया जाए। समझौते द्वारा यह बात संभव नहीं थी। इसके लिए डॉक्टर सन्यात सेन ने जो प्रयत्न किया था वह सफल नहीं हो सका था। अब किमिंग तोंग सरकार के सम्मुख केवल यही मार्ग शेष था कि वह सैन्य शक्ति का प्रयोग कर चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना का प्रयास करे। 1926 में कैंटन की सरकार की सेनाओं ने उत्तर की ओर अपनी विजय यात्रा आरंभ की। इन सेनाओं का प्रधान सेनापति चियांग काई शेक था। उसका जन्म 1889 में चेकियांग प्रांत में हुआ था। बचपन में ही वह क्रांतिकारी विचारों के संपर्क में आ गया था। उसकी शिक्षा सैनिक ढंग पर हुई थी। चीन में सैनिक शिक्षा प्राप्त कर चुकने पर वह सैनिक शिक्षा के लिए जापान भी गया था। डॉक्टर सन्यात सेन के संपर्क में आकर वह उनका कट्टर अनुयायी बन गया था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद उसने रूस की भी यात्रा की थी और वहां रहकर उसने समाजवादी व्यवस्था का भी गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था। समाजवाद के प्रति उसके हृदय में आदर का भाव था, पर वह स्वयं कम्युनिस्ट नहीं बना था।